రూపముతశ్చాగ్రజూరిపరిమాతుష్టవాతి రాధాకుందం గిరివర్మహోదాదికామాభవాసం ప్రాప్తో నమో మహావదన్నాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయ కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య గురవే గౌరచంద్రాయ రాధికాయ కృష్ణాయ కృష్ణ భక్తాయ భక్తాయ యం ప్రజంతమనుపేతమేతు ద్వైపాయనో విరహ కార్తవ్యా పుత్రేతి తన్మయతయా సర్వో భిలేతి తం సర్వభూతద్వయం నారదజీ ప్రయాగ సే కృష్ణ కే సబ్సే బడే కృపా పాత్ర కౌన్ హే उसको चलाकी से साथ बिठलाने के लिए वहां के जमींदार नरेश वो ठाकुर जी का बाल गोपाल मूर्ति लेकर और पूजा कर रहा था, कहा कि आपसे बढ़कर के कोई कि हम नहीं तो फिर दक्षिण भारत में बड़े राजा के पास में गए। उन्होंने कहा कि मैंने उससे बड़े इंद्र हैं, इंद्र ने कहा कि ब्रह्मा जी इसी प्रकार से वो कहां गए पांडवों के पास में और फिर वहां से उद्धव के संबंध में सुना। उद्धव जी भगवान के अत्यंत प्रिय हैं, उनसे बढ़कर के और कोई प्रिय नहीं है। सुन करके और झट वो द्वारकापुरी पहुंचे, वीणा लेकर गायन करते हुए उद्धव उद्धव कहते हुए महाराज परीक्षित कर रहे हैं। आई कैन नॉट स्पीक इन 2-3-4 लैंग्वेजेस, हैव स्पोकन सो मच इन इंग्लिश इन वेस्टर्न कंट्री। So, one of you can translate. Otherwise, I will be more tired. But here all are Western devotees, knowing English, all talk to person. And those who are Hindi speaking, they have no interest to hear at all. So, Narada Rishi declared in whole world that who is the most superior, most dear to Krishna. And that is why he began his journey from Prayag and then South India to Indra, Brahma, Prahlad, Hanuman, and then Pandav, and then he came to Pandav, and they told, oh, we are not so much fortunate, we died in the world, and they glorified him. Tat Sutva, Mahaprem, Rasaveshi na Jambita, Mahavishnu, Hiro, Tina Hatta, Vrata, Vishnu, Tathati. Parikshit ji ne kaha, Mata ji, Uddhav ka mahatma sun karke, iske mujhse Yudhishthir Maharaj, Bhim, Arjun, Nakul, Sahadev, Kunti, Abhra, सबने आज हमारे जैसा दुर्भागा कोई नहीं, हम लोग सबसे दुर्भागा है। तो उद्धव जी बड़े भगवान के कृपा पात्र, उस सबका पंचम अध्याय में उसका वर्णन किया हुआ। उद्धव ये कहेंगे माता जी, उद्धव जी का महात्म सुन करके भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्रिय नारद जी प्रेम रुषे आवेश में मग्न हो गए और सब कुछ भूल गए, देह और दैनिक बीणा बजाना भूल गए, बीणा हाथ में रही और वे द्वारकापुरी में वहां पर पहुंचे। तथा धारावती बासात अभस्त पुनर्वर्तमान प्रभु प्रसाद आदेशांत प्रवेश आश्चर्यवाणी। नारद जी प्रेम में सब कुछ भूल गए, भारती का बिना भी नहीं बजा सके और उद्धव जी की जय जयकार बोलते हुए चलने लगे। द्वारकापुरी कैसी है, समुद्र के बीच में बड़ी बड़ी बीथियां हैं, रास्ता मार्ग बड़े बड़े उद्यान हैं और 16,000 रानियों के लिए 16,000 राजमहल बनाए हैं और एक एक शमल ऐसे सुंदर हैं कि वो साधारण आदमी उसमें जा नहीं सकता, भूल जाएगा। विशेष करके रुक्मिणी जी का घर जहाँ है, यहाँ पर के कृष्ण रहते हैं, वहां पर जाना बहुत कठिन है और नारद जी प्रेम रस में पागल हो गए। तभी वे प्राय जाते आते रहते थे द्वारकापुरी में और रुक्मिणी के भवन में कृष्ण से मिलने के लिए जाते आते रहते थे। कृष्ण दर्शन लालसा, यद्यपि उनको अभिशाप है दक्ष प्रजापति का कि वे एक जगह घोर दुग्ध काल से अधिक नहीं रह सकते, किंतु कैसे रह गए वहां, कैसे जाते थे? कृष्ण दर्शन लालता वो सांप से मुक्त था, व्हाट आई टोल्ड यू और यू अंडरस्टूड समथिंग और यू शुड टेल के बोलते एनीवन इज स्पीकिंग हो कोई जीत है स्पीकिंग देन यू आर अंडर हियरिंग यू आर ऑल हियरिंग स्पीकिंग देन हाँ तो यू शुड स्पीक व्हाट आई
So, it's describing Prince of Knowledge, describing to his mother. I'm now really trying to find who's the best recipient of the message to Krishna. He went from Indra to Lord Brahma, from Lord Brahma, he went to the Pandavas. So the Pandavas told Onara, you're not the real recipient of the message to Krishna. The real recipient of the message to Krishna is Uddhava. So when Onara heard this, he became so much ecstatic and mad, even he forgot to play his vina, he went running to Dwarkapuri. So Dwarkapuri is situated in the middle of the ocean. An ordinary person cannot enter there, very hard to enter. But Narada Muni became so mad, he ended into the house of Mukmini, a very, very astonishing opulence was there. So normally because of the curse of Prajapati Daksha, Narada could not stay in one place for more than a short period of time. Because he had so much desire to have darshan of Krishna, he became free from that curse and he went inside to see Krishna.
Daksha Prajapati, उसके बहुत से लड़के हुए और सब लड़कों को बालकों को भेजा नारद जी के यहाँ पढ़ाने के लिए, जिनको शाम ताम दंड भेद इत्यादि पढ़ाइए और पुत्र उत्पन्न इत्यादि संतति उत्पन्न करने की भी शिक्षा दें, जैसे हमारी वंश परंपरा चले। किंतु नारद जी ने उनको असली शिक्षा पढ़ाई, जैसे उनको भक्ति हृदय में हुई और संसार आसार है ऐसा समझ करके सब लड़कों को भक्ति ऐसी शिक्षा दी, वो घर छोड़ करके चले गए भजन करने के। दक्ष प्रजापति आए, बोले हमारे लड़के कहाँ गए? तो वो तो यहाँ से पढ़ लिख करके चले गए, कहाँ गए ये तो नहीं जानते, वृंदावन में चले गए, कहाँ चले गए? वो बहुत बिगड़ा, अजय एक बार आप हम अपने बच्चों को भेजेंगे क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त और कोई पढ़ाने वाला नहीं, उनका ऐसी शिक्षा मत देना जो घर बार छोड़ करके चलेगा। ठीक है, फिर भेजा तो उन्होंने फिर इस बार ऐसा पढ़ाया जो फिर वो लोग भक्ति मार्ग में चले गए और घर में कोई नहीं लौटे। दक्ष प्रजापति बहुत बिगड़ा और क्रोध से साप दिया, ये तुम कहीं भी दो क्षण नहीं टिक सकते संसार में, केवल रह सकते हो गोदोहन का काल बस एक जगह रह सकते, अधिक किसी को शिक्षा नहीं दोगे जैसे वो घर छोड़ करके चला गया। नारद जी बड़े प्रसन्न हो, बोले जी आज से मैं इसके इससे मुक्त हो गया, अब सर्वत्र जाऊंगा भगवान की शिक्षा। तो इस प्रकार से करने लगे, किंतु जब उनकी इच्छा होती कि कृष्ण का दर्शन करूंगा तो द्वारकापुरी में चले जाते, द्वारकापुरी में अभिशाप नहीं जाता क्योंकि कृष्ण के भुजाओं से रक्षित है। श्लोक का तो जगत में कोई भी अभिशाप है वो जगत में नहीं अपराधिक जगत है, इसलिए उसका साप वहां पर नहीं लागू होता था, इसलिए स्थिर रह करके जब तक इच्छा होती कृष्ण का दर्शन करते, उनके लीलाओं का भी दर्शन करते, साथ वहां नहीं जाता। इसलिए नारद जी वहां पर पहुंचे, पहले का अभ्यास था, बीच बीच में जाते थे, इसलिए प्रेम में उन्मत्त होने पर भी वो अपने आप उनका पैर चलता गया और रुक्मिणी के घर में पहुंचे, जो दूसरों के लिए पहुंचना बहुत भारी मुश्किल था।
So, the Dhamma Dasha performed kind of studies to, in order for Brahma to undergo creation. So he was very learned person in all type of Veda. So he produced many, many sons. He sent them to perform austerities. At that time, they met with Sita. He sent them to perform austerities to create more progeny. At that time, by good fortune, they met with Sri Narad Muni. Narad Muni gave them such instructions that brought the end of their heart, and they never returned home. Took sannyas and performed bhajan. So who knows where they went, maybe to Vrindavan. So Daksha very angry. So he told Narad, okay, don't give those type of instructions. So he had another lot of sons. He sent them also to perform austerities. Narad Muni caught them also, and gave them instructions on bhakti tattva. So they also never returned home. So Prajapati Daksha became very angry. He gave curse to Narad Muni. You can never stay in one place more than 2 seconds. Because everywhere you go, you give such instructions to destroy and break family household situation. Therefore, never stay in one place. So Narad Muni became very happy. Oh, now I can go everywhere and reach Bhagavad Shiksha.
Right out,
Shiksha of pastimes. So Narad Muni, sometimes he has desire to have darshan with Sri Krishna, so that he goes to Dwarkapuri. Because Dwarkapuri is protected by Krishna himself, because it's the upper transcendental dham, therefore no curse can work there. So Narad Muni, he went inside, which is very hard for an ordinary person to do. He is so much ecstatic and desirous to see Krishna. Automatically, his legs put him there into the palace of Dwarkapuri.
नारद जी धूमक वापी स्खलति पतति वापी तिष्ठत अचेष्ट काप्य उत्कंप भजति लुटति वापी रोदिति की वार्ता। नारद जी प्रेम में विवश होकर के और उद्धव की सेवाओं का चिंतन करते 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 कभी गिर पड़ते हैं जमीन में, कभी लौटते हैं पड़ते हैं, कभी चेष्टा रहते एकदम चुपचाप स्थिर हो जाते हैं। क्या तात्पर्य? ये प्रेमा भक्ति का लक्षण है, कृष्ण की लीलाओं का और उद्धव के साथ उनके संबंधों का चिंतन करते करते अश्वशाक्तिक भाव उनके आ गए। इसलिए प्रेम में विवश होकर के कभी गिर पड़ते हैं, कभी जमीन पर लौटते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। इस तरह से कभी लौटते पलटते हैं, कभी जोर से रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, और कभी बहुत जोर से रोते हैं प्लुत स्वर से, और कभी कीर्तन करने लगते हैं, कभी नाचने लगते हैं, कभी युगपत समस्त प्रेम विकार एक साथ में उनको उत्पन्न हो जाते।
फोन कर दिए पाठिए
भगवान कृष्ण उस मूर्छा में भी परम आनंद है, इसलिए आनंद तुम्हारे मूर्छित हो जाते हैं और संसार का सब कुछ विस्मित हो जाते हैं। संसारिक लोग समझते हैं जैसे हम मूर्छित हो जाते हैं वैसे कोई ज्ञान नहीं। जैसे किसी को कोई ऑपरेशन करना हो तो उसे सुझा देते हैं कोई क्लोरोफॉर्म या क्या, तो बाहर भीतर सब स्मृति उसकी नष्ट हो जाती। कृष्ण भक्ति में ऐसा नहीं, ऊपर से ऐसा दिखता है और भीतर से क्या, उस समय कृष्ण की लीलाओं का चिंतन और मालूम होता है स्पष्ट रूप में कृष्ण की लीलाओं को दर्शन करते। ऐसे उनको लोग समझा, बाहर के लोग समझते होंगे ये भूत इनको पकड़ ली। और भक्त लोग जब देखेंगे ना अब इसको समझेंगे उद्धव जी और लोग समझेंगे और कोई नहीं समझेगा। महापुरुषों के भावों को कनिष्ठ नहीं समझ सकते, ये असंभव। पूरा बोलो।
सो एज यू नो एवरी Any parts of Pakistani God could be seen in the body of Sri Narayana. Sometimes he became stunned, sometimes he would roll on the ground, sometimes he was shouting and crying very loudly. So what is this? This is the symptom of Prem Bhakti. And all eight could be seen on the body of Sri Narayana. Even though Narayana became so much like mad, this is not madness, this is under the influence of Sukhasattva. So even though he forgot everything about his body, he never forgot which way is the path to Krishna's room. And so Sri Sanatana Goswami gave a commentary. The devotee may forget everything in his world, but he never forgets the path of bhakti. So sometimes we see that the gopis or any high class Vaishnava, sometimes they fall on the ground and become unconscious. But their unconsciousness is not like us or like the unconsciousness or monies or other types of so-called sadhus. When the monies go into samadhi, they forget everything, this world, and also they forget themselves. But when the gopis or the Vaishnavas go into samadhi, they deeply remember all the name and form and qualities and pastimes of Krishna. So Krishna Adhikari cannot understand like that. They think that when a Vaishnava goes into samadhi, like when they go into an operation, and the doctor gives some anesthetic, the time that person forgets everything, but the Vaishnava is not like that. Even though they appear to be unconscious, they never forget their relationship with Krishna.
He manmati matari danim samishabhana tarabhava tirtam prapeyam jimman sarthaityam srimitam sitam shvayam. हे मेरी मैया, अब सावधानी से सुनो। अब तक जो सुना और उससे अधिक सावधानी से सुनो। मैं यदि कहीं मोहित हो जाऊं तो हमको भी धैर्य बंधा, और तुम भी धैर्य से सुनो। अब यहाँ से प्रेम गोपियों के और गोपों के ब्रजवासियों का प्रेम का वर्णन होगा, ये तात्पर्य। इसलिए आप धैर्य धारण करो। यदि मैं धैर्य चुप हो जाऊं या बोलते बोलते मूर्छित हो जाऊं भावना अविष्ट होकर, तो हमको धैर्य बंधाना, और फिर धैर्य होने के बाद हे माता, उस दिन जिस दिन नरक वहां पर पहुंचे भूताभिष्ट होकर के, तो रुक्मिणी के घर के में जब गए तो देखा रुक्मिणी के घर के दरवाजे पर, द्वार देश पर, तो श्रीमान उद्धव जी कुछ उदास मुख से बैठे हुए। उद्धव जी कहाँ बैठे थे? रुक्मिणी के घर में नहीं बैठे, रुक्मिणी के कारण पलंग पर कृष्ण थे। उनको छोड़ करके ये दहली के पास में, दरवाजे के पास में बैठे हुए थे। अंत प्रकोष्ठ में भीतर में कृष्ण सो रहे हैं। तीन ऊंट आया है, काफी दिन चढ़ गया और कृष्ण सो रहे हैं, ऐसा ध्यान करके वो लोग बड़े दुखी होकर के उठकर भी बैठे हैं। और पास ही में श्री बलदेव जी, देवी मैया, रोहिणी, रुक्मिणी, सप्तभामा और सब महिषियां, ज्ञानवंती इत्यादि, ये सब बैठी हुई हैं बड़ी उदास मन से। आज कृष्ण को सोने में इतनी देर, उठने में देरी हो गई, क्यों ऐसा हुआ? और भगवत प्रवृत्ति हारिणी कंस की माँ पद्मा, पद्मा कौन सी? भगवत प्रवृत्ति हारिणी, भगवान की भक्ति की प्रवृत्ति को भी नष्ट करने वाली कंस की माता पद्मावती और दूसरी दूसरी दासियां सभी चुपचाप उदास मन से रहती, वो भी उदास मन से सभी। इसलिए अपनी मैया को कहा, अब देखो ये विरह आएगा, बहुत सावधानी से सुनना। देखो उस दिन श्रीमान उद्धव जी बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? आज इतनी देर हो गई, सूरज कहां ऊपर चला गया, दिन हो गए 9-10 बज गए और कृष्ण भी सोए हुए हैं, इसलिए मालूम होता है कि उनकी तबीयत कुछ खराब है। अभी उस चीज को अभी बतला नहीं रहे कि हम देखता थे, क्योंकि अभी इसमें बोलना उचित नहीं, क्योंकि नारद है ना उद्धव, सभी लोग और दिन में प्रमत्त हो जाएंगे, इसलिए बोलना उचित नहीं समझा। हमारे और आपके जैसे नहीं है जो कि उनकी जीरा की बातों को सुन करके हम लोग हंसे, उनका अनुभूति होगी। इसलिए अभी ही उस चीज को खोल करके कह देना, अथवा मोह की आशंका से के ना भी किसी कारण से सोए हुए, कारण नहीं बतला है, कारण किंतु वह कुछ क्या है पहले पीछे बतला है नहीं। इसलिए कृष्ण क्यों ऐसा हो गया आज अभी तक से सो रहे हैं, ऐसा सोच करके उद्धव जी भीतर से निकल कर बाहर में बैठे, अंतपुर रुक्मिणी के राजभवन से बैठ निकल करके बाहर में, और बलदेव प्रभृति देवती जी, बलदेव प्रभु, रुक्मिणी, सत्यभामा, ज्ञानवंती, रोहिणी, मैया इत्यादि सब उनके द्वार देश पर ही बैठे हैं, भीतर में कोई नहीं, भीतर में पलंग पर सो रहे हैं अकेले। पद्मावती सा प्रसिद्ध पद्मावती, कौन सी पद्मावती है प्रसिद्ध बोलने का उद्देश्य है, उनके पति उग्रसेन थे, किंतु कंस उग्रसेन का पुत्र नहीं था, वो द्रुमदैत्य का पुत्र था। कंस की माता बड़ी सुंदर थी, सुंदरी थी, तो उग्रसेन थी, उग्रसेन पत्नी बड़ी सुंदरी थी बचपन में, तो वो अपने पीहर में आई और द्रुमित दैत्य ने उन्हें देखा और उनका चरित्र भ्रष्ट किया, उसी से कंस राक्षस होकर के जन्मा, इसलिए उग्रसेन का पुत्र नहीं था कंस, इसने अपने पिताजी को कैद किया और भगवान का विरोध किया, पांडवों का विरोध किया, सब लोगों का विरोध किया, इसलिए वो कहेंगे प्रसिद्ध है। इसलिए वो प्रसिद्ध पर उसकी मैया भी माँ पति मुँह उदास थी, क्यों? उसका कारण किससे बतलाएगा? वो भगवान की लीलाओं का बाहरी स्वरूप समझ करके कुछ अपने भाव से उसको बतलाती थी। गोपियां कृष्ण को चाहती हैं तो गौ चराने के लिए, प्रिय होने के नाते, पुत्र होने के नाते नहीं। और गोपियां क्या करती हैं ये रुक्मिणी जी जानती हैं, रुक्मिणी मैया जानती, वो भीतर की भाव जानने वाले और ये बाहर की भाव। साधारण आदमी भक्ति के भावों को नहीं समझता, वो अपने जैसा ही दूसरों को भी ऐसा ही समझता है। एक कनिष्ठ अधिकारी व्यक्ति उत्तम अधिकार के भक्तों की बात को क्या समझेगा? या साधारण आदमी? सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी की सभा में आ रहे और लड़के सब उनके ऊपर में धूल कंकड़ फेंक रहे हैं, स्त्रियां हंस रही है, ये पागल आ गए। और जब परीक्षित महाराज जी के सभा में नारद इत्यादि सब उठ करके खड़े हो गए, वो उन लोगों ने क्या देखा? कोई महाभागवत आए? देवतानों की भी शक्ति नहीं है कि वैष्णव को पहचान सके तो और लोगों की। इसलिए मत समझो कि वैष्णव को हम ठीक पहचान गए, सब गुरु को पहचान गए, ऐसा मत समझो।
Because now we're going to be talking about separation route and also about better friends. So don't become unconscious. Be very, very patiently. At that time, Srinath Muni, he went into the room and asked Sri Rukmini Devi. At that time, what did he see? A very astonishing thing. Many, many people were there, including Uddha, Devaki, Rohini Ma, Rukmini, Satyabhama, Padma Bharati. None were inside the room, only Krishna was inside the room sleeping. This was about 10 o'clock in the morning, very, very late. So all because of humility, were not inside the room of Radha on the doorstep. So all were very sad, especially Uddha. Because Uddha was thinking there must be something wrong with Krishna, some sickness or some unhappiness. Otherwise, he's sleeping so late. So when Narada Muni saw the situation, he did not speak because he could understand that to speak at this time of separation was very inappropriate. So, but Mahavati was also there. Shriti, wife of Ugrasen and Kamsa's mother. So here, Sri Sanatana Swami is describing Mahavati as Bhagava Priti Harini, one who steals away one's tendency to serve Sri Krishna. Because Parvati, when she was young, she was very, very beautiful, very attractive. So when she was doing Mathura, one morning she went for a walk in her own garden and she was seen by the Rakshas Drumila. So Drumila became attracted to her and brought her chastity. So therefore, Kamsa is not really the son of Ugrasen, he's actually the son of the demon, Drumila. That's why he was a demon and was always against Krishna and against Krishna's devotees, the Pandavas, everyone. So, someone like Padmavati, she cannot really understand the pastimes of Krishna. She has her own external understanding. But someone like Rukmi, like Rohini Ma, she can understand the real conception of Krishna's pastimes. For example, I'm a true person, he tends to think everyone is pretty much like me. So therefore, a Kanishka Adhikari cannot understand the real behavior or speech of high class of Vaishnavas or the pastimes of Krishna. For example, when Sri Sukadeva Goswami, he approached the bank of the river where Krishna Maharaj was sitting. That time Sri Sukadeva Goswami was surrounded by many, many young boys and ladies. So those children were throwing stones and bits of mud on the head of Sisuddhiya Goswami because they could not understand in the exalted position. And when Sri Prichit Maharaj and all the other monies saw, oh, Sisuddhiya Goswami is here, they really stood up and offered him so much respect, understanding, oh, now I know he's come. So we should not jump to the conclusion that, oh, I understand Vaishnava Sahaja is going to do that. This is not a good idea.
नारदी इस प्रकार से अष्ट सात्विक भाव में विभोर हैं और वहां पर उन्हीं सप्तभामा जी इत्यादि हैं वो ऐसी हैं कि नहीं है इस अवस्था में पहुंच करके जमीन में लोट पोट रहे हैं आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है कभी रोते हैं कभी नृत्य करते हैं कभी पृथ्वी पर लोटने लग जाते हैं ये भक्ति की कौन सी स्थिति है कौन सी स्थिति नारद जी कौन स्थिति में है तो ये प्रेम से स्थिति में पहुंच गए हैं और प्रेम से भी अधिक यहाँ पर स्नेह और प्रणय इत्यादि इसमें कुछ लक्षित हो रहे हैं इन्हें साधारण स्थिति नहीं है किंतु अपने से उद्धव को श्रेष्ठ मान रहे हैं है ना अपने से उद्धव सबको श्रेष्ठ मान रहे हैं और अपने को दीन ही मान रहे हैं यही भक्ति का लक्षण है इसलिए अन्नाभिलाषिता संयम के श्लोक है उसमें कृष्णानुशीलनम उत्तम भक्ति ये उसकी स्थिति में कुछ और आगे अग्रसर होकर इसलिए साधारण नहीं है उसकी भूताश्च ते सर्वा वर्तमान सभी सत्यनारकर प्राप्त अच्छन अत्यंता अपूर्व चेष्टा उस समय नारद जी की अपूर्व चेष्टा को देखा जो कभी ये गिर रहे हैं पढ़ रहे हैं कभी हाथ काट कर रहे हैं देख करके सभी लोग विस्मित हो गए आश्चर्यचकित हो गए और सब लोग उनको उनके पास में आकर के अवसर दिया उनको और उस समय में वे लोग उठ करके नारद जी को और स्थिर कराए जरा स्थिर होइए कृष्ण सो रहे हैं उनकी निद्रा भंग ना हो जाए ये भी एक कारण और इसलिए उठ करके उनके अश्रु को मार्जन किया पानी लेकर के उनके मुंह को धोया नारद जी को स्थिर किया अब वो कुछ सुस्थिर हुए फिर वो बोले हे ब्राह्मण आप तो कृष्ण के बड़े कृपा पात्र हैं नारद को कह रहे हैं भगवान के बड़े कृपा पात्र आज हम लोग आपकी ऐसी अपूर्व चेष्टाओं को क्यों कैसे देख रहे हैं क्या कारण क्या है आपको ये क्या हो गया भूत जैसा आप लोट पोट रहे हैं और हम अशु पुलोट ये सब हो रहे हैं क्यों हो रहा है कारण क्या है आज से पहले तो हमने कभी नहीं देखा थोड़ा सा स्थित होइए और बतलाइए तो उसके लिए हम लोग कुछ उपचार करेंगे उचित ना करेंगे मैया सुनो आगे नारद की आंखें अश्रुओं से भरी हुई है क्यों उद्धव जी की कृष्ण की सेवा को स्मरण करके यदि कोई भी थोड़ी सी अपने गुरु भगवान की सेवा कोई करता है यदि शुद्ध भक्त होता है तो भाव में विद्रोह हो जाता है सेवक वह है जो दूसरों को अपनी गुरु सेवा में तनिक भी सेवा दे करके समझता है कि इसने बहुत सेवा की हम तो कुछ करते हैं या कोई भगवान का सेवक हो जैसे पुलिंद तथा न्याय गोवर्धन में भगवान की कौन सी सेवा की हिरण्य क्या सेवा की कृष्ण की और गोपियां क्या देख रहे हैं उनको आप प्रणय नेत्र कृष्ण की बंसी को सुन करके उनका रूप देख करके ये मुक्त हो गए ये मूर्ख है क्या वो धन्यास को पूर्ण हम बताओ अपने ये मूर्ख आप कृष्ण से पनीर की भीख मांग रहे हैं और उसका पति पीछे पीछे उसके ये पुलिंद कन्याए कृष्ण के चरणों में लगे हुए महावर को देख करके प्रेम से मग्न होकर के अपने चारों शरीर में देखती है मान लो आज कृष्ण को पानी और हम लोग ऐसे जूठा का जाते नहीं कर सकते तो यही होता है शेष भक्तों का ये दर्शन यदि वो देखता है कि उनके आराध्य का उन्होंने कुछ देखा तो सेवा करते वो भाव के गुण यही हो रही है। तो परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं आंखों में अश्रु के भरे हुए हैं और वो नमस्कार करने लगे किनको जो बैठे बैठे हुए हैं उद्धव जी को देख करके उन सबको और बड़े कंपित कलेवर से पुटित होकर के गदगद स्वर से वो ये कहने लगते नारद जी ने कहा नारद जी बोले यदि आप लोग चाहते हैं हमको जीवित रखना और हमको शांत करना चाहते हैं तो महाभागवत उद्धव जी का दर्शन हमें करा दीजिए भगवान का ऐसा कृपा पात्र हमने कहीं नहीं सुना इसलिए उनका दर्शन करा दें अथवा आप लोग कृपा करें जो उद्धव जी की चरण की धूलि को मैं स्पर्श करके अपने शरीर में लगाऊं उसी में हमारी आत्मा शांत हो जाएगी। हमने आज तक या प्राचीन या अर्वाचीन नवीन जितने भी प्रभु के अनुग्रह के पात्र हैं भगवान का ऐसा अनुग्रह किसी ने नहीं पाया जहां जहां वो गए उन सबको अब ले लो कोई प्रयाग से लेकर के अब तक जिनके पास में गए हैं पांडव इत्यादि से प्रभु का अनुग्रह ये प्राप्त इसीलिए भगवान ने स्वयं इनको अपनी विभूति कहा है भक्तों में मैं उद्धव ये विभूति बतला है और भी श्रीमद् भागवत में बतला है आगे बतला है।
So just imagine Narada's position is not an ordinary position. You know, we can think he's crossed the stage of Brahma in some snake, Pranaya, Malan, Anurag, president him to some degree. But what is he thinking? He's thinking, I'm the lowest. But Uddhav is the real recipient of Krishna's mercy. Seeing Narada's condition, everyone became astonished. Were present there at the doorstep, offered respect to Narada Muni. And they calmed him down and made him peaceful and washed his face with water. They thought, now it should be calm, otherwise he'll break Krishna's sleep. So Narada said, oh, Uddhav, you are really the recipient of the mercy of Krishna. And Uddhav was asking, oh, Narada, what happened to you? How have you become mad? That time, white tears were coming to the eye of Narada. That time, Narada Muni was remembering, oh, Uddhav has done so much seva to Krishna. So this is the position of a real Vaishnava of seva. Even if someone has done even a little bit of service to Gurudev, to Vaishnava, to Bhagavan, then a real Vaishnava will think, oh, they have done so much service, and they'll become ecstatic. Just like the gopis. The gopis are the highest of all. When they see the peacocks, they think, oh, the peacocks have done so much service to Krishna. Just look how much love they have for him. When they see him, they become stunned by great sadhus. পলাতি আবিষ্কৃত এখানে পূজা আজকে অফিস অফ মিনিং দা টাইম ট্রাভেল উইথ देम দ্য ফরেস্ট গ্রো তাই ইন দ্য ট্রাভেল আই থিংক অল দে হ্যাভ রিয়েল মেসেজেস দে লাভ ক্রিসমাস সো মাচ সো নাও আই ওয়াজ সেইং ও অনলি বাই ওয়াটার আই ক্যান নট বি কাম ইফ ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট টু কাম মি ওর ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট টু সেভ মাই লাইফ and give me darshan of Mahabharata like Uddhav and put his foot down on my head, then only my mind and my soul can become peaceful. So Narada was thinking, oh, no one yet that I have met has got mercy on Uddhav and got mercy.
Hamare jivan ka uddeshya aisi bhakti ko laab karna hai. Isliye chesta karo इसी जीवन में हम लोग स्थिति को प्राप्त करें. यदि प्राप्त भी नहीं करते हैं उस लाइन में या तो आ जाए अंततः श्रद्धा से निष्ठा और निष्ठा से रुचि में आने की चेष्टा करो. रुचि में आने के बाद में अनिश्चितता भक्ति समाप्त होती है, नहीं तो होगा कि विवाह करके रहूं या क्या करूं. नारद जी जैसा रहू, अरे प्रहलाद महाराज जी तो भक्त थे, वो भी तो शादी किया. अरे व्यास जी ने क्या शादी नहीं किया तो हम भी करने में दोष हो जाएगा. फिर नारद जी, अरे नारद जी कौन कह रहा है, नारद जी ब्रह्मचारी हैं कि क्या है, वो बहुत ऊंचे. इसलिए हमारे जीवन का उद्देश्य कम से अनिश्चितता भक्ति से निश्चितता भक्ति में आए. घर में रखकर के पहले करूं, बाद में करूं, शादी करूं कि न करूं. अभी पुत्र घर में है और मैया पूरे हो रहे हैं, मैया भी और क्या करें. अभी इधर इच्छा रह रही है जो मठ बात मिलता है वो भी करें या वो करें. बड़ी क्रिटिकल स्थिति है. ये सबको छोड़ करके यदि नारद जी जैसा होना चाहते हो तो नारद जी जैसा बनो. 1000 गंधर्वों के कितना करोड़ों गंधर्वियों के साथ में रहे पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के अभिशाप से, किंतु स्पर्श नहीं कर सका ये काम और हो. और फिर दूसरे जन्म में दासी पुत्र होकर के आए, तब साथी वादी कुछ नहीं किया और कैसे तपस्या की, भगवान का भजन किया, वैष्णव के संग में रहे, तब ऐसी भक्ति प्राप्त हुई. इसलिए गृहस्थ में चले जाएंगे और बस भक्ति झट मिल जाएगी, पांडव जैसा बन जाएगा ऐसा मत समझो. इन्हें जीवन का आदर्श बना करके कम से कम तो तुम लोग ये इस भक्ति में अनिश्चितता से निश्चितता में आओ और उसे रुचि आ जाए. जिस दिन नाम में रुचि आएगी, सेवा में रुचि आएगी, अर्चन में रुचि आएगी, रसोई बनाने में ठाकुर जी की रुचि आएगी, गुरु जी की सेवा में रुचि आएगी,
so in conclusion Guru Maharaj is giving us some enthusiasm. So this is our life's goal, to attain a bhakti just like the Lord has. So for this we have to work very hard. If we are now at the stage of anishtha bhakti, hands can be devotional service, then we have to endeavor very hard to come to the platform of anishtha bhakti and be steady. If we are the platform of Nishita Bhakti, we have to work very hard to come to the stage of Ruchi. So Nishita Bhakti have many symptoms. For example, one may be thinking, oh, should I become Brahmachari, Vandasi, or Sannyasi, or should I marry? Oh, Vyasadeva married, so what problem? The Pandava is also married. So if I marry, I can become like them with the Vajam. But hang on the other hand, he never married. And so many of our Guru Bharata never married. So what should I do? What should I do? Should I live in the mud? Should I take diksha? Or should I stay at home and do bhajan with my mother and father and brothers? So we should understand, if we want to become a Prabhupada like Narad Muni, then we have to follow Narad Muni. Don't think, oh yes, the Pandav is also married, so I can also marry and I'll get bhakti like the Pandavas. You should not think like this. For example, look at Narad Nishtha. even though he was cursed by Prabhuji and became Gandharva, even though he was surrounded by thousands and thousands of asuras, they could not catch his mind, they could not disturb him. Even from there, when he was cursed to become the son of a maidservant, Subrani, even then, Naraduni, he never gave up his brother, he never married or anything. So we should try and follow like Naraduni, then we can hope to attain a type of devotion like Naraduni.
Oh,
Damodar, Damodar.